Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Manisha Panchakam, presented by Swami Sri Avadesh Chaitanya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Drishti sa partha chet apartha अनुश्रविको भी। दृष्ट विषय से तो संभव है ही नहीं, अनुश्रविक शास्त्रीय कर्म उपाय के द्वारा भी तुम उस कर्म को, उस कष्ट को त्रिविध दुख से निष्कृति पा नहीं सकते। तस्मात् सर्वं त्याजम् तत् प्राप्तिव साधनम्। इसलिए लिखते सब त्याग करके केवल तत् प्राप्ति, ईश्वर को प्राप्त करो, और ईश्वर प्राप्ति निमित्त ही दुख, त्रिविध दुख की निवृत्ति संभव है। और यही आचार्य शंकर भी कह रहे हैं कि भूतं भावी ये जो दुष्कृतम् जत मया कृतम, ये सब संबिन्मये पावके पावकम। इसको पावन आप कर सकते हैं एकमात्र परमात्मा अस्तित्व के प्रबोध से। इसलिए भगवान भक्तजन ये न केन प्रकार से उस ईश्वर के अभिमुख हो जाए, उनसे दूर न रहे, उनसे विमुख न रहे। धर्म ज्ञान ऐश्वर्य ये सब उनके पास है, ज्ञान भी उनके पास है, ऐश्वर्य भी है, धर्म भी है, इसलिए उनके अभिमुख हो जाए। शास्त्र में श्वेतश्वतर उपनिषद के ऋषि स्पष्ट लिखते हैं धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य यही तो चार चाहिए, ये सब ईश्वर के सन्मुख है। और ईश्वर के विमुख जो है, ईश्वर के पीछे है अधर्म अज्ञान अनैश्वर्य और अवैराग्य। जिनके जीवन में अवैराग्य है, अज्ञान है, अधर्म है, अनैश्वर्य है, तो समझना चाहिए ईश्वर अभिमुख नहीं है। और जब आप ईश्वर के अभिमुख होते हैं तो आपके जीवन में धर्म, आपके जीवन में ज्ञान, आपके जीवन में ऐश्वर्य, आपके जीवन में प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवत भक्तजन जब विमुखता व्यक्ति के जीवन में आता है तो समझना चाहिए अधर्म और प्रबल हो रहा है। अगर ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं तो ईश्वर के सम्मुख होना पड़ेगा, और उस सम्मुख में ही वैराग्य प्रतिष्ठित है। संसार से छूटना है वैराग्य के द्वारा तो वैराग्य कहाँ मिलेगा भाई? ईश्वर से दूर हटने से वैराग्य नहीं मिलेगा, उनके सन्मुख, ईश्वर के सन्मुख वैराग्य है। ईश्वर से दूर चले जाने से, भागने से ज्ञान नहीं मिलेगा, वो तो आप और अज्ञान में जा रहे हैं, तो ईश्वर के सम्मुख जाकर के बैठे। इसलिए ज्ञान ऐश्वर्य ये सब ईश्वर के पास है, वैराग्य ईश्वर के पास है, धर्म ईश्वर के पास है, और उससे विमुख जो होते हैं उनसे ये ठीक इसके विपरीत उनको मिलता है अधर्म अवैराग्य अनैश्वर्य अज्ञान। इसलिए भगवत भक्तजन ईश्वर के सम्मुख हो, और ईश्वर को प्राप्त करने से ही, ईश्वर के सम्मुख होने से ही ये भूतं भावी च दुष्कृतं प्रदाता। प्रश्न कर रहे हैं कि ठीक है संचित कर्म का नाश संभव है, परंतु जो महाराज तीर जो है धनुष बाण से निकल गया है वो तो उस लक्ष्य को भेद करके ही रहेगा, अर्थात जो प्रारब्ध कर्म है, जो इस जीवन में फल प्राप्ति के लिए निश्चित हो चुका है, ऐसा जो कर्म है वो कर्म कैसे खंडित हो सकता है। न भूंगते प्रारब्धम कर्म क्षीयते। भाई प्रारब्ध कर्म तो भोग के बिना क्षय नहीं होता है। आपने संचित कर्म, चाहे वो भूत हो चाहे भावी हो, ये सब जो है ईश्वर ज्ञान से मिटता है। परंतु जो प्रारब्ध कर्म है, उस प्रारब्ध कर्म के लिए क्या करे, क्या उपाय है? आचार्य जी कह रहे हैं कि देखो, प्रारब्ध तो भाई भोग के द्वारा ही मिटेगा। तो इस शरीर में जो प्रारब्ध मिला, जो भोग निश्चय हो गया कि इस शरीर में उसको उतना भोग, उतना कष्ट, उतना तड़प, उतनी वेदना मिलने वाला है, तो साधक ज्ञान के बाद निश्चिंत हो जाते हैं। प्रारब्धाय समर्पितं स्ववपुरी तेषामणिशामम। प्रारब्धाय समर्पितम, वो प्रारब्ध को, यह शरीर को जो है प्रारब्ध के हाथ पर समर्पित कर देते हैं। समर्पण में एक ऐसी शक्ति है कि उस व्यक्ति को अंदर से वो मजबूत कर देता है नारायण। इसलिए ज्ञानी जो ईश्वर को दर्शन किए, उनके जीवन में जो भी प्रारब्ध कर्म निश्चित हो गया कि ये तो इतना तो फल, इतना तो कष्ट, चाहे सुख मिलना ही मिलना है, तो वो ज्ञानी, वो आत्म साक्षात्कार जिन्होंने किया, वो प्रारब्ध के हाथ में इस शरीर को छोड़ देते हैं, अर्पण कर देते हैं। और हे प्रारब्धम, तुम जो भी करना चाहते हो इस शरीर से करो, जो भी भोग तुम्हें भोगना है, जो भी प्राप्त करना है इस शरीर के द्वारा करो। इसलिए भगवत भक्तजन प्रारब्ध कर्म को खंडन कोई कर नहीं सकते। आनंदगिरी जी लिखते हैं, ज्ञानी प्रारब्ध समर्पितम तत्संसारिनो कीदृशो गति। भाई ज्ञानी जो है वो तो प्रारब्ध कर्म जो है ईश्वर को समर्पण कर देंगे कि ईश्वर जैसा चाहे वो प्रारब्ध के अधीन इस शरीर को अर्पण कर दिया। परंतु जो अज्ञानी है, जो साधक है, हम जैसे मनुष्यों के लिए क्या कर्तव्य है? न दोषो न दातव्यम न वचनम कृतम। न दोषो दातव्यम, ईश्वर को दोष न दो। यत्त्वया कृत कर्मोहम न दोषो ईश्वरोऽस्ति चेत्। क्या शब्द लिखते कि भाई तुम ईश्वर को क्यों दोष दे रहे हो? तुम जो कष्ट पा रहे हो उसके मूल में तुम्हारा ही कर्म है। वो तो ईश्वर है, परमात्मा है, प्रिय है, वो तुम्हारा कर्म को संभाल के रखा। यत्तया सुखमाप्यते तद न स्मर्यते तथा। जब तुम सुख को प्राप्त करते हो तब तो उसको याद नहीं करते हो कि सुख उन्होंने उठा के रखा, मेरा कर्म क्या हुआ, वो सुख है वो उठा के रखा। वो जब वो रखा हुआ कर्म फल सुख वो जब देते तब उनको याद नहीं करते हो। और जो तुम्हारा कर्म फल दुख है वो उठा के रखा, वो भी तुम्हारे सामने केवल दिया, और उसके लिए तुम उसको क्यों दोष देते हो? यत्तया कृतम कर्मम भोगादेव क्षसक्षयम्। इसलिए जो कर्म तुमने किया वो तुम्हारा भोग के द्वारा ही समाप्त होगा। प्रारब्धम स्ववपूरित्येषम् इसलिए इस शरीर को, इस शरीर के कष्ट को, भोग को, चाहे वो सुख रूप में हो, चाहे वो दुख रूप में हो, चाहे तीन सुख में कोई भी हो, त्रिविध ताप कोई भी आपको प्राप्त हो, वो प्रारब्ध भोग, प्रारब्ध कर्म आप भोग रहे हैं, ऐसा मान करके ईश्वर के सम्मुख हो जाओ। इसलिए भगवत भक्त जन, दुख के समय हम ईश्वर को बहुत कोसते रहते हैं कि तुम ऐसे क्यों। अरे वर्तमान जीवन में अगर आप ईश्वर को बुला रहे हैं और इस निमित्त आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ये जो अभी हम दुख को पा रहे हैं, ये तो मेरा किया हुआ कर्म है, और अभी जो मैं सत्कर्म कर रहा हूं, ये तो मेरा संचित हो रहा है। इसलिए प्रारब्ध अगर कष्ट है, तो आप इस शरीर में, इस जन्म में कितना भी सत्कर्म, सत्संग, सदाचरण करें, तो कष्ट अगर आपका किया हुआ है कर्म, तो आपको इस जीवन में कष्ट भोगना ही है। इसलिए क्या करना है, हमें जो कष्ट मिल रहे इसमें क्या करना है, ईश्वर को थैंक यू बोलना है। कर सकते हैं? कष्ट पा रहे और प्रभु को कि तुम कितने उदार हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम हमारे कितने प्रिय हो। क्यों? क्योंकि तुम जो है कष्ट दे दे करके हमारे कर्म को काट रहे हो, कटा रहे हो। इस रूप से कि आप जो कष्ट दे रहे हैं, अगर इस जीवन में हमें 50 दुख मिलना है, अगर आज अपने किसी के द्वारा अपमानित किया कोई, तो भगवान को थैंक यू को कहो कि एक कर्म जो हमारा ही किया हुआ था, वो तूने काट दिया, तूने क्षय करवा दिए। दोष नहीं कि हमारा ही कर्म 50, उसमें से आज 2 तूने कम कर दिया, उपकार किया, कुछ बढ़ाया नहीं, कुछ ऐड नहीं किया, इसलिए उनको धन्यवाद, इसलिए उनको कृतज्ञता, इसलिए उनको थैंक्स देना है। अगर हम उसको दोष देते हैं कि तुम ऐसे क्यों, तुम्हारे पूजा करता हूं, तुम्हारे सत्संग करता हूं, तो वो अज्ञान है, वो विमुखता है। और आप अगर इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते कि जो भी किया वो मेरा ही किया कराया है, और आपने जो है उस किरा कराया पर एक कम करने में लगे हैं, कितना प्रिय हो सकते हैं जो हमारे कष्ट को वो दूर करने के लिए भोग दे दे करके, कष्ट दे दे करके उसको कम कर रहे हैं। और जब कष्ट आए, नारायण ईश्वर को पुकारे, वही एकमात्र शांति, तृप्ति, सुख दे सकते हैं। इसलिए जब तक कर्म करना है खूब करें। उपनिषद के ऋषि लिखते हैं कि देखो, कर्म अगर मन में करने की इच्छा है तो खूब कर्म करो। वेदांत में ऐसे नहीं कहा कि कर्म छोड़ो। ये वेदांती लोगों का ना बड़ा दुर्गति होती है, पता है आप लोग, बड़ी दुर्गति कर्म छोड़ करके जो बैठ जाते हैं। कर्म छोड़ना नहीं है। अगर मन में तीव्र वासना है, कर्म करने की एक ललक है, तो आप कर्म करें, कर्म करें, खूब कर्म करें। परंतु कर्म कैसे करें? उपनिषद ऋषि लिखते हैं, आरंभ कर्माणि गुणान्वितानि। कर्म करो, आरंभ कर्म जो भी मन में आए कर्म करने के लिए, वो सब कर्म करो, परंतु गुणान्वितानि, गुण कर्म करो। ऐसा कर्म करो कि जो कर्म करने पर जीवन में वो कर्म उबटन का काम करे, जीवन में वो कर्म संयोग का काम करे। हिनांग कर्म करो, पावन कर्म करो, इसलिए कर्म को भी तीन प्रकार से उपनिषदों में वर्णन करते हैं कि कर्म अगर करना है तो त्रिविध कर्म कर्तव्य, ऐसा कर्म करो कि जीवन में कुछ प्रभु के साथ युक्त हो सके, ऐसा कर्म करो कि जीवन में कुछ अगर त्रुटि है वो मिट सके, ऐसा कर्म करो कि जीवन में दैवी अभिवृद्धि हो। इसलिए गुण युक्त कर्म करो, निर्गुण अवगुण युक्त कर्म ना करो। जिस कर्म में प्रभु से अलग होने की कर्म आप करते वो अवगुण कर्म है, गुण कर्म नहीं। जिस कर्म जो है आपके वृत्तियों को दूर ले जाता है ईश्वर से वो कर्म गुणान्वित कर्म नहीं है। इसलिए उपनिषद के ऋषि लिखते हैं आरंभम कर्माणि गुणान्वितानि भावाश्च सर्वान् तदेव करतु। इसलिए आरंभ कर्म करो, जितना भी मन में जब तक कर्म के प्रति ललक है करो, परंतु वो प्रत्येक कर्म गुण संयुक्त होकर के करो। ऐसा कर्म ना करो जिस कर्म करने से तुम्हारा जीवन में वही भोग के वही कष्ट वही प्रभु से दूर ले चले। इसलिए भगवत भक्तजन ज्ञान ईश्वर साक्षात्कार ईश्वर प्राप्ति ऐसी एक साधना है। अगर आपका भूतपूर्व कर्म और ज्ञान के बाद जो भावी कर्म है भूतम भावी च सब कर्म जो है वो एकमात्र संविन्मय पावके, एकमात्र ज्ञान के द्वारा ही वो समाप्त हो सकता है। और बची रही प्रारब्ध कर्म, इस प्रारब्ध कर्म को ईश्वर के पास कष्ट भोग के द्वारा उसको भोगने के पश्चात ही वो शरीर को त्याग सकते हैं। इसलिए महापुरुषों के जीवनी में हम देखते हैं ज्ञान के बाद भी उनके शरीर में उतना ही कष्ट। कई बार मन में आता है कि इतने बड़े तपस्वी इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष उनके शरीर में इतना कष्ट, भाई प्रारब्ध जो है वो भोग के द्वारा ही। और हम देखते हैं कि कष्ट पा रहे परंतु उनके शरीर के साथ चूंकि उतना अटैचमेंट नहीं है इसलिए कष्ट मिलते हुए भी उस चेतना को ईश्वर के चरणों में अर्पण कर देते हैं। इस प्रकार से जीवन को अगर चला सकते हैं तब तो फिर जीवन में कुछ उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन आज आचार्य यही बात बतलाना चाह रहे हैं कि देखो प्रारब्ध को मिटाने के प्रयत्न न करो, प्रारब्ध को प्रारब्ध के अधीन इस शरीर को छोड़ो, समर्पण करो, प्रारब्ध को समर्पित कर दो इस शरीर को। और जो भी तुम्हारा संचित कर्म बचा है जो अभी भोगोन्मुख नहीं है भविष्य में वो आने वाला है उसको तुम्हारा परमात्मा के ज्ञान से दूर कर सकते हैं। इसलिए अगर शरीर से भूतों से दैवी दुर्विपाक से कष्ट पा रहे हैं तो कष्ट के लिए दुख के लिए कोई दोषी कोई नहीं ना रहे, कोई नहीं। अगर कोई दोषी है तो मैं स्वयं, क्योंकि मेरा ही किया हुआ कर्म आज वो प्रबल होकर के उपस्थित हुए कि अब तुमने जो कर्म किया ये फल लो। और ये जब कष्ट पा रहे हैं तड़प रहे हैं तो प्रभु को भूलना नहीं। हम लोग सोचते हैं कि इतना किया इतना बुलाया इतना पुकारा फिर भी मेरे जीवन में इतना कष्ट, अब छोड़ो तो महाराज गहना कर्मणो गति, आप जो है और गहन कर्म करने में लग गए। अरे भाई जीवन में ऐसा एक अवलंबन ऐसा एक आश्रय लो वो कभी तुमको धोखा देने वाला नहीं है। संसार के क्षणिक व्यक्ति जिनके अस्तित्व ही कोई ठिकाना नहीं उनके ऊपर हम विश्वास करके उनके आश्रय पर जी लेते हैं, वो हो सकता है कि वो आपको धोखा देने के लिए मित्रता का संबंध बनाए रखा। परंतु ऐसा एक मित्र है जो कभी आपसे सुहृदं सर्वभूतानां, वो आपके सुहृद है और उनको आविष्कार करके उनके चरणों में अपना सर्व समर्पण करके ईश्वराधीन होकर के जीवित रहे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।